Pocket Mantra. Pocket Mantra. Pocket Mantra. Pocket Mantra. Pocket Mantra. Pocket Mantra. Good evening, listeners, and welcome to Market Mantra, the program in which we give you a comprehensive update on the economic, business and stock market news of the day. Along with my co-anchor Amrish Saxena, I am Sarabjit Kaur.
नमस्कार आर्थिक खबरों के कार्यक्रम मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है. आधे घंटे के इस कार्यक्रम में हम देश और दुनिया से आर्थिक व्यापारिक और शेयर बाजार के ताजा समाचार आप तक लाएंगे और उन पर चर्चा भी करेंगे. हमारे साथ खबरों पर चर्चा के लिए स्टूडियो में आमंत्रित हैं वरिष्ठ आर्थिक विशेषज्ञ सुषमा रामचंद्रन. सुषमा जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है.
थैंक यू.
और अब हेडलाइंस के साथ हैं सरबजीत कौर.
SIP inflows hit all-time high of 26,632 crore rupees in April as per AMFI data. Benchmark domestic equity indices slip 1.1% amid geopolitical jitters. Sensex sheds 880 points. Nifty holds over 24,000. And global crude oil prices rise over 1.5%. Brent crude trades at $64.02 per barrel.
AMFI ke aankdon ke anusar SIP के माध्यम से म्यूचुअल फंड में निवेश 26,632 करोड़ रुपए के उच्चतम स्तर पर पहुंचा. क्षेत्रीय तनाव के बीच घरेलू शेयर बाजारों में 1.1% की गिरावट दर्ज की गई. सेंसेक्स 880 अंक लुढ़का, निफ्टी 24,000 के ऊपर बंद हुआ. और वैश्विक कच्चे तेल के मूल्यों में 1.5% से अधिक की तेजी दिखाई दी. ब्रेंट क्रूड का मूल्य $64.02 प्रति बैरल दर्ज किया गया. और आज की पहली खबर, एसोसिएशन फॉर म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया एमफी के आज जारी आंकड़ों के अनुसार अप्रैल में भारत के म्यूचुअल फंड निवेश में ऐतिहासिक वृद्धि हुई, जब मासिक व्यवस्थित निवेश योजना SIP का योगदान 26,632 करोड़ रुपए के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया. सक्रिय SIP खाते मार्च में 8 करोड़ 11 लाख से बढ़कर 8 करोड़ 38 लाख पर पहुंच गए. महीने के दौरान 46 लाख नए खाते खोले गए. कुल म्यूचुअल फंड प्रबंधन परिसंपत्तियां AUM 65,74,000 करोड़ रुपए से बढ़कर रिकॉर्ड 70,00,000 करोड़ रुपए हो गई. जहां मार्च में म्यूचुअल फंड में निवेश 1,64,000 करोड़ रुपए का हुआ था, वहीं अप्रैल में यह राशि बढ़कर 2,76,000 करोड़ रुपए हो गई. ये आंकड़े मजबूत निवेशक विश्वास और बढ़ती खुदरा भागीदारी को दर्शाते हैं. इक्विटी म्यूचुअल फंड में निवेश 25,082 करोड़ रुपए से मामूली रूप से कम होकर 24,269 करोड़ रुपए का हो गया. फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड में निवेश 5,542 करोड़ रुपए का हुआ, जबकि स्मॉल कैप फंड्स में यह राशि 4,000 करोड़ रुपए की रही. सेक्टर आधारित फंड्स में भी तेजी दिखाई दी और निवेश की राशि 2,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गई. लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में भी बड़ी वापसी दिखाई दी, जहां मार्च में इन फंड्स में निवेश 372 करोड़ रुपए की गिरावट देखी गई थी, वहीं अप्रैल में निवेश की राशि 2671 करोड़ रुपए पर पहुंच गई.
अमरीश, यू नो द फर्स्ट हेडलाइन ऑफ आवर प्रोग्राम टुडे इंस्टिल्स कॉन्फिडेंस. SIP inflows hit all-time high. Sushma, in spite of the fact that April was a month of uncertainties, rather April 2nd was the deadly deadline of Trump tariffs, April 9, a window period of 90 days was announced. In spite of all this, the rising graph of investments in systematic investment plan, or commonly known as SIP, you know, this is indeed a very positive piece of news. What's your comment on this?
Well, first of all, I would say, this has happened over a period of time, and we have not really appreciated the dramatic change in the investment culture of the middle classes, whether it is the lower middle class or the upper middle class. There has been a huge change in investment culture over the last few decades. In the past, our parents, or even I myself probably, used to think of investment in, a very secure area would be fixed deposits, bank fixed deposits, and real estate. You know, these were something that were considered a very reliable and secure.
Very conservative approach.
So you take your hard-earned money and you put it in very safe areas. But over the years, the development, the equity markets expanded, an equity market culture, developed in this country. But at the same time, there were people who were worried about, putting their money in this fast-moving, volatile markets directly as retail investors. So when this mutual fund industry expanded, and it has expanded very rapidly, you had the opportunity of people to invest in funds which are managed by managers who are experts in the stock markets, who could take care of your money. And they used to have, you have talked now about thematic funds. You talk, of course, there are gold-traded funds. There are all kinds of equity funds where you can focus on certain sectors also. And yet, at the same time, your money is not, in a few volatile stocks. And you have an expert who is there to manage it. And now it is considered, along with fixed deposits and real estate, well, this is another secure area. Your money is not going to be lost. Maybe your return may be a little slow, or they might be slightly volatile, but your money is not going to be lost. It's a secure investment. The middle classes are investing, and this data that you have presented shows, I mean, this is a huge amount, an all-time high of 26,632 crores, that the middle class has really put its faith in this investment instrument.
Lekin Sushma ji, ek in aankdon mein ek khas baat jo nazar aa rahi hai ki SIP mein to jo nivesh hua wo bahut record is tarah पहुंचा
जी.
लेकिन इक्विटी में थोड़ा स्लाइटली नीचे आया.
हाँ.
इन दोनों आंकड़ों को आप कैसे एनालाइज करेंगे?
देखिए, वो एसआईपीज का एडवांटेज ये है कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान जो होता है, इसका एडवांटेज ये होता है कि जिसने निवेश करना है कि वो हर महीने थोड़ा थोड़ा कर सकता है, उसको एकदम बहुत ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है. तो इसका अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, तो इसलिए इक्विटी का में थोड़ा सा कम, और ये एसआईपीज, और ये आपको अगर कोई फाइनेंशियल प्लानर से आप राय लें तो वो पहले आपको कहेंगे, अरे भी आप एसआईपीज में इन्वेस्टमेंट कीजिए धीरे धीरे करके, और फिर आप जाके दूसरे इक्विटी फंड्स में जब आप थोड़े से एक्सपीरियंस्ड हो जाएंगे तो और आप अपना पैसा इन इक्विटी फंड्स में निवेश कीजिए. तो इसका फायदा, जैसे मैंने कहा कि आपके पास एक्सपर्ट्स होते हैं म्यूचुअल फंड्स में आपको बताने के लिए कि किस फंड में आपको निवेश करना चाहिए.
और एक और चीज जो हम इन आंकड़ों में देख रहे हैं, अगर हम इसको एसआईपी के और म्यूचुअल फंड के आंकड़ों को हम जो स्टॉक मार्केट की स्थिति थी पिछले एक महीने दो महीने से जितनी उथल पुथल चल रही थी उसकी लाइट में देखें, तो आपको क्या लगता है कि बहुत सारे ऐसे खुदरा निवेशक जो सीधे स्टॉक मार्केट में जा सकते थे, वहां से जाने से उन्होंने परहेज किया और ये म्यूचुअल फंड और एसआईपी का रूट चुना?
बिल्कुल, जो वॉलिटिलिटी चल रही है अभी एक दो महीने से, उससे डर के लोग यहाँ पर म्यूचुअल फंड्स में आ गए हैं, और उनको ये पता है कि अगर म्यूचुअल फंड्स में हम जाएंगे तो हमारा जो पैसा है सिर्फ एक ही स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं होगा, क्योंकि अगर हम इन्वेस्ट करेंगे तो हम देखेंगे अरे बहुत अच्छे ब्लू चिप स्टॉक्स हैं और हम उनमें इन्वेस्ट करना चाहेंगे, लेकिन अगर आप फंड में डालेंगे तो फंड मैनेजर जो है वो देखता है कि आपका थोड़ा सा लार्ज कैप में डालेंगे, थोड़ा स्मॉल कैप में और थोड़ा सा मीडियम. हालांकि लार्ज कैप फंड्स भी अलग होते हैं, वो भी है स्पेशलाइजेशन, तो वो भी आप देख सकते हैं, लेकिन जो जिस तरह की निवेश आप करना चाहते हैं उस तरह का आप कर सकते हैं.
जी, और चलते हैं शेयर बाजारों का हाल जान लेते हैं. भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव के मद्देनजर घरेलू शेयर बाजारों में आज 1.1% की गिरावट दिखाई दी. 30 शेयरों पर आधारित बम्बई शेयर बाजार का सेंसेक्स 880 अंक गिरकर 79,000 454 अंकों पर आ गया। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 266 अंकों की कमी के साथ 24,008 अंकों पर बंद हुआ। बंबई शेयर बाजार के व्यापक बाजार में भी गिरावट दर्ज की गई। मिड कैप सूचकांक 0.1% गिरा, जबकि स्मॉल कैप सूचकांक में गिरावट 0.3% की रही।
The benchmark domestic equity indices today ended 1.1% down amid escalating geopolitical tensions between India and Pakistan. The 30-share index at the Bombay Stock Exchange, Sensex, shed 880 points to close at 79,454. The National Stock Exchange, Nifty 50, lost 266 points to settle at 24,008. The broader market indices at the BSE closed with modest losses. The mid-cap index declined 0.1% and the small cap index slipped 0.3%. In the Sensex pack, 25 out of 30 companies edged down. In the top laggards, ICC Bank slid over 3.1%, Power Grid slipped 2.7%, and Ultratech Cement dropped over 2.1%. Among the top gainers, Titan climbed over 4.3%, Tata Motors rose 3.9%, and Larsen & Toubro added more than 3.7%. In sectoral indices at the BSE, 17 out of 21 sectors ended in negative territory. Among the top laggards, Realty fell over 2%, Utilities lost 1.5%, and Financial Services declined 1.4%. In the top gainers, capital goods inched up over 1.6%, consumer durables added almost 1.3%, and industrial increased 1.1%. The overall market breadth at the BSE was negative, as shares of 2,522 companies declined, 1,343 advanced, and shares of 145 companies remained unchanged. At the National Stock Exchange, 16 companies hit their 52-week high, while 113 companies hit their 52-week low. Sushma, in spite of all these figures, you know, there's so much of uncertainty in the present scenario, tense relations between India and Pakistan. But still, do you see an element of resilience in the Indian stock market?
Yes, absolutely. I mean, we have to remember also that despite the fact that the markets have been going down for the last 2 days, they have, in a sense, factored in these tensions because these have been going on for quite some time now. And otherwise, you have not seen the crash in the stock markets that we saw, for instance, after April 2nd, when there was huge losses after the announcement of the new tariffs by President Donald Trump. In fact, I mean, this is a far more a difficult situation, a crisis, geopolitical tensions, and yet the stock markets have fallen. But you know, it is not; it's a modest fall, you can say. And also, the very interesting thing is that foreign institutional investors still remain net buyers. You know, the foreign investors are still putting their faith in the Indian stock markets. Domestic retail investors are, of course, a little nervous, and that is bound to be there because of the conditions, situation. But as I said, there has not been a crash. One would have expected that in a situation like this, with so much of tension going on in the atmosphere, you could have had a crash in the markets. That simply hasn't happened. And that, as you rightly pointed out, shows the resilience of the stock markets.
Lekin agar hum Sushma ji kal ke bazaar se tulna kare, kal din bhar theek thaak chal raha tha, aakhri ghante mein giravat aayi. और कल काफी एक्शन भी हमें दिखाई दिया।
कल बिल्कुल सबसे ज्यादा कल था
जी, और आज कोई एक्शन भी नहीं हुआ, बावजूद इसके बाजार नीचे आ गया।
वो थोड़ा सा मेरे कल जो कहते हैं ना डिलेड रिएक्शन, और कल जो सारा दिन बातें हो रही थी उसका उनका असर जो भी जो इन्वेस्टर्स हैं जो मार्केट स्टॉक मार्केट्स में करते हैं, तो वो ऑब्वियसली उनके ऊपर जो टेंशंस का जो असर है वो आज हुआ है, क्योंकि एमईए की भी ब्रीफिंग हुई है एक दो और मतलब जो सारी इतनी खबरें, बहुत सारी कुछ गलत खबरें भी आ रही है, कुछ अच्छी खबरें भी आ रही है, कुछ ठीक है, कुछ गलत है, मिस इन्फॉर्मेशन भी बहुत आती है ऐसे वक्तों पर, तो इससे थोड़ी सी नर्वसनेस आ जाती है मार्केट में। पर जैसे मैंने कहा, मुझे आश्चर्य है कि क्रैश नहीं हुआ। जैसे अप्रैल 2nd में जो हुआ था वो एक्चुअली अमेरिका में हुआ, लेकिन उसका इतना ज्यादा असर हुआ, लेकिन ये चीज यहाँ पर हो रही है।
जी, जैसे आपने कहा सुषमा जी क्रैश नहीं हुआ, हमें क्रैश असली तो कराची स्टॉक मार्केट में दिखाई दिया।
हाँ बिल्कुल।
एक दो बहुत महत्वपूर्ण घटनाएं हुई कल से आज के बीच में कि भारत और यूके का जो ट्रेड पैक्ट हुआ, फिर यूएस का और यूके का हुआ, तो दो बहुत ही पॉजिटिव खबरें थी, लेकिन उसका शेयर बाजार पे कोई असर क्यों नहीं दिखा?
वो मेरे ख्याल इस वक्त जो डोमेस्टिक ट्रेंड्स हैं उनका असर ज्यादा है, और ये भी है कि जैसे हम कह रहे हैं कि क्रैश नहीं हुआ, उसका भी असर है कि इतना ज्यादा डाउन डिटेरियरेशन नहीं हुआ, इतना ज्यादा बेरिश ट्रेंड नहीं हुआ, क्योंकि ग्लोबल स्तर पर, विश्व स्तर पर आपको ये पॉजिटिव संकेत आ रहे हैं। यूएस और चाइना की भी टॉक्स अभी शुरू होने वाली है। यूएस यूके जैसे आपने कहा उनका डील ये बहुत बड़ा डील है जो उनके में हुआ है, और इंडिया और यूके का भी अभी हुआ है। तो ये लगता है जैसे जो टैरिफ वॉर्स की हम बात कर रहे थे, लगता है कि ये सारी चीजें थोड़ी सी सुलझ जाएंगी और सेटल डाउन हो जाएंगी।
जी, अब ये जिस तरह का तनाव भारत और पाकिस्तान के बीच में, इसकी लाइट में अगर हम देखें पाकिस्तान की इकोनॉमी, जिस तरह से उनका शेयर बाजार क्रैश कर रहा है, एक खबर। दूसरी बात, जो IMF में लोन लेने के लिए उन्होंने 1.3 अरब डॉलर की जो अर्जी लगाई हुई है और भारत उसका विरोध कर रहा है, भारत ने जला दिया है, ऐसे में आपको पाकिस्तान को इस लोन के मिलने की कितनी संभावना दिखाई दे रही है, और क्या स्थिति पाकिस्तान की होगी इस लोन के संदर्भ में जो IMF में उन्होंने लगाई है अर्जी?
देखिए, पहली बात तो ये है कि हमें शायद ज्यादातर लोगों को ये नहीं मालूम होगा कि जब से 1950 से लेके अब तक पाकिस्तान ने 25 बार IMF का लोन लिया है और उसके कंपैरिजन में देखिए इंडिया ने एक ही बार लिया है, मतलब स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट दैट काइंड ऑफ अ लोन जो बेल आउट प्रोग्राम होता है, हमने एक ही बार लिया था। तो इसका जो फर्क है हमारी आर्थिक स्थिति और उनकी आर्थिक स्थिति में जमीन आसमान का फर्क है, तो पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि उनके जो ये $6 बिलियन का लोन अभी उनका चल रहा था और उनकी जो ट्रांचेस में इनको देते हैं, और आज का जो रिव्यू होना था शायद हो गया होगा या चल रहा होगा, उसका रिव्यू जो है इसमें $2 बिलियन इमीडिएटली पाकिस्तान को मतलब संभावना थी कि मिल जाएगा, लेकिन इस वक्त अगर IMF को ये सोचना पड़ेगा कि अगर हम पैसा इस वक्त दें, पैसा उनकी विकास के तरफ
ना जाके
अपने डिफेंस और ऑफेंस की जो चीजें कर रही हैं, मिलिट्री ऑपरेशंस कर रहे हैं, उसमें पैसा जाएगा।
लेकिन मेरे ख्याल में आपको क्या लगता है, IMF को ये भी तो सोचना चाहिए या सोचना पड़ेगा कि ये वापस कैसे आएगा, बार बार लोन रीपेमेंट कैसे होगा?
IMF ये पाकिस्तान की जो आर्थिक स्थिति है वो बहुत ही हल्की फुल्की है इस वक्त, बहुत ही वीक है, फ्रेजाइल है हम कह सकते हैं। उनका उनकी जो ग्रोथ रेट इस साल की इस फाइनेंशियल ईयर में सोच रहे हैं कि 3.2% हो जाएगी, तो अगर डेवलपिंग इकोनॉमी के लिए 3.2% तो बहुत ही कम है, पिछले साल 2.7% था और मेरे ख्याल 22-23 में माइनस कंट्रैक्शन हुआ था उनकी इकोनॉमी का, शायद वो खैर कोविड के बाद था, लेकिन फिर भी हमारे देश में जो जिस तरह का जो ग्रोथ हो रहा है और इमर्जिंग इकोनॉमीज में होना भी चाहिए क्योंकि आपको तेजी से अपना
विकास
आगे करना, तो पॉवर्टी लेवल्स भी उनके बहुत हाई है, 42.3% उनकी पॉवर्टी लेवल है, उनकी एक्सटर्नल डेट जो है $130 बिलियन है, फॉरेन बहुत बढ़ गया है और उसमें 1/5 शायद ज्यादातर चीन का ही है ये डेट, और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हमारी शायद 600 बिलियन डॉलर के करीबन है, $600 बिलियन से ज्यादा है, इनके $15 बिलियन के करीब है जो सिर्फ 3 महीने के इम्पोर्ट्स में कवर करता है, तो उनकी जो आर्थिक स्थिति है बहुत ही फ्रेजाइल है इस वक्त।
और चलते हैं रुपए का हाल जान लेते हैं। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया डॉलर के मुकाबले 33 पैसे मजबूत होकर 85.38 रुपए प्रति डॉलर के स्तर पर बंद हुआ। छह अन्य मुद्राओं की तुलना में डॉलर की मजबूती मापने वाला डॉलर सूचकांक दिन के कारोबार में 100.41 पर था। तो सुषमा जी, रुपए के बारे में आप क्या कहेंगी? कल थोड़ा कमजोरी दिखाई दी थी और चूंकि डॉलर भी लगातार मजबूत हुआ है, लेकिन बावजूद इसके रुपया एक सर्टेन लेवल पे बना हुआ है।
ये भी ताजुब की बात है, जैसे मैंने कहा कि मार्केट इतनी क्यों नहीं गिरी है। ये रुपया इस वक्त जबकि इतनी टेंशन्स है, हमारी बॉर्डर टेंशन्स, उस वक्त रुपया ऊपर जा रहा है। इसका मतलब है ये जो फेथ है हमारी इकोनॉमी में, करेंसी में फेथ है, वो काफी स्ट्रांग है। और ये इनफैक्ट कल के बाद हमने सोचा कि शायद मार्केट्स की तरह ये भी नीचे जाएगा, लेकिन ये काफी मजबूत रहा है रुपया।
जी,
India and Chile signed the Terms of Reference, TOR, for a Comprehensive Economic Partnership Agreement, CEPA, marking a significant advancement in their bilateral trade relations. The mutually agreed TOR was signed yesterday by Ambassador of Chile in India, Juan Angulo, and Joint Secretary Department of Commerce, Vimal Anand. Ministry of Commerce, in a statement, said that both sides reiterated their shared vision for strengthening bilateral relations and look forward to fruitful discussion during the first round scheduled for 26th to 30th of this month in New Delhi. The CEPA aims to build upon the existing preferential trade agreement between the two nations. It seeks to encompass a broader range of sectors, including digital services, investment promotion and cooperation, MSME and critical minerals, among others, for enhancing economic integration and cooperation. Sushma, this terms of reference and this bilateral agreement with between India and Chile, how well does it augur for the development of India?
It's very interesting because this is after all, Latin America is very far away from here. Chile is a country which is very distant from India, but we have always had very close, good relations with Chile. And also, if you see the items that are listed, one of them is critical minerals. So Chile has a lot of important essential minerals. It also has, Chile also has a lot of small industry which could benefit by collaboration with India, and gain the expertise that, for instance, we have in development of the small and medium industries. Though it's a distant country, it's a country with whom we have always, as I said, had good ties. And investment promotion, is an area that we are likely to develop. Digital services, of course, is an area where Chile would like to collaborate with India, and India would also like to spread the word about its United Payment Interface, the UPI, and try and, as far as possible, try and bring more people into the ambit of its financial system.
Moving on to the next story of the day, India's foreign exchange reserves declined by $2.06 billion, reaching $686.06 billion in a week ending 2nd May, according to the weekly statistical supplement released by the Reserve Bank of India during the last week. Foreign currency assets, a major component of the reserves, were up by $514 million to over $581.1 billion. However, gold reserves decreased by $2.54 billion, totaling to $81.82 billion. Special drawing rights was down by $30 million, reaching over $18.55 billion. And central bank's position in the International Monetary Fund was also down by $3 million, reaching $4.5 billion. Government is leaving no stone unturned to ensure foolproof functioning of essential systems and services in the country. The steps are being taken by various ministries and departments for national preparedness and inter-ministerial coordination in light of recent developments concerning national security. We have more details on this from our correspondent.
Union Health Minister J.P. Nadda today held a review meeting with senior officers of his ministry on health infrastructure and preparedness. Public sector banks have informed that ATM cash deposit machines and withdrawal machines and all digital services are fully operational and are available for public use. The banks have asked customers not to rely on unverified information. On the other hand, Indian Oil Corporation has assured that there are ample fuel stock across the country and its supply lines are operating smoothly. It has also urged people to avoid panic buying and unnecessary rush to ensure uninterrupted fuel access for all. With Anand Kumar, Divakar, Akashwani News, Delhi.
और चलते हैं एशिया के अन्य बाजारों का हाल जान लेते हैं. चीन और अमेरिका के बीच महत्वपूर्ण व्यापार वार्ता से पहले एशिया के अधिकांश शेयर बाजारों में मिला जुला रुख दिखाई दिया. जापान में टोक्यो शेयर बाजार का निकी 1.5% से अधिक बढ़ा. सिंगापुर के स्टेट्स टाइम्स इंडेक्स में तेजी 0.7% की रही, जबकि हांगकांग शेयर बाजार के हैंगसेंग इंडेक्स में 0.4% की बढ़ोतरी दिखाई दी. दूसरी ओर चीन के शंघाई कंपोजिट इंडेक्स में 0.3% की गिरावट दर्ज की गई, जबकि दक्षिण कोरिया का कोस्पी इंडेक्स लगभग स्थिर रहा. इस बीच यूरोप के प्रमुख शेयर बाजारों में दिन के कारोबार के दौरान तेजी का माहौल बना रहा. अंतिम समाचार मिलने तक फ्रांस के कैक में 0.5% से अधिक और जर्मनी के डेक्स में 0.4% से अधिक की बढ़त चल रही थी. लंदन के फुटसी में 0.35% की बढ़त बनी हुई थी. और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल रात ब्रिटेन के साथ विशेष व्यापार समझौते की घोषणा की. श्री ट्रंप ने इसे कई समझौतों में से पहला समझौता बताया. इस समझौते में चुनिंदा ब्रिटिशकारों पर आयात कर में कमी और इस्पात तथा एल्यूमिनियम का शुल्क मुक्त आयात शामिल है. ब्रिटेन के अधिकांश सामानों पर 10% शुल्क जारी रहेगा. ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर रॉडनी स्टार्मर फोन पर ट्रंप के साथ इस घोषणा में शामिल हुए. राष्ट्रपति ट्रंप ने पुष्टि की कि अन्य नेता ओवल ऑफिस में इसी तरह के समझौतों पर हस्ताक्षर करेंगे. ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने इस समझौते को शानदार और ऐतिहासिक बताया. उन्होंने कहा कि इससे इंग्लैंड के कार निर्माताओं और स्टील विनिर्माताओं को संरक्षण मिलेगा. सुषमा जी, बहुत ही अच्छी खबर. और इसी वजह से हमने देखा कि एशिया के ज्यादातर बाजार और यूरोप में एक अच्छी बढ़त दिखाई दी. आप क्या कहेंगे?
ये बिल्कुल, ये जो है ये इसका मतलब है जो क्राइसिस हमने हम अप्रैल सेकंड का जिक्र बार बार कर रहे हैं, उस वक्त इतना बड़ा क्राइसिस लग रहा था और अब लगता है कि सब कुछ थोड़ा सा धीरे धीरे ठीक हो रहा है. अब भारत के साथ भी जो जो टॉक्स चल रही है, बातचीत चल रही है यूएस के साथ, उसमें भी शायद हस्ताक्षर जल्दी ही हो जाएगा. और खैर यूएस और यूके का तो पहला हो गया बहुत बड़ा डील, और उसके बाद अब यूएस चाइना की भी टॉक्स चल रहे हैं.
जी जी.
U.S. stocks ended higher on Thursday as investors cheered new trade agreement between the United States and Britain, while U.S. President Donald Trump signaled upcoming talks with China would be more substantial than initially thought. The Nasdaq composite rose over 1%, Dow Jones Industrial Average gained more than 0.6%, S&P 500 added 0.58%. On the economic front, weekly initial jobless claims for state unemployment benefits dropped 13,000 to a seasonally adjusted 2,28,000 last week. Sushma, we have been talking about preparedness of the country in the light of geopolitical tensions between India and Pakistan, be it the health services or, you know, calling off the holidays of, you know, state employees, keeping everybody on alert. There have been mock drills. What's your comment on this kind of preparedness for the country in the light of the present tension? Very briefly.
I think this is something very important because citizens need to be prepared, and these kind of drills ensure that we get into the mode of preparing for it when there is no actual event taking place. And then children, whether it's school children, whether it's ordinary people like you and me, we learn what to do in a crisis. And I think this is a wonderful thing that the civil defense organizations are doing for us.
Well, let's take an update on the crude oil prices, which rose today and were on track for a weekly gain as trade tensions between top oil consumers China and the United States showed signs of easing, and the UK and US struck a breakthrough trade deal. Brent crude was trading over 1.8% up at $64.02 per barrel.
और सराफा बाजार में सोना आज गिरावट के साथ कारोबार कर रहा था। अंतिम समाचार मिलने तक भारत में 24 कैरेट सोना 0.05% गिरकर 96,600 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर था। वहीं चांदी 0.27% गिरकर 96,430 रुपए प्रति किलोग्राम के स्तर पर दर्ज की गई। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में अंतिम समाचार मिलने तक जून में आपूर्ति किए जाने वाले सोने का वायदा मूल्य 0.10% बढ़कर 96,261 रुपए प्रति 10 ग्राम पर चल रहा था। और चलते हैं कार्यक्रम की समाप्ति की ओर। सुषमा जी, इस कार्यक्रम में भाग लेने और प्रमुख खबरों पर चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद अमरीश।
Yes, listeners, before we wrap up, a reminder of the headlines. SIP inflows hit all-time high of 26,632 crore rupees in April as per AMFI data. Benchmark domestic equity indices slip 1.1% and geopolitical jitters. Sensex sheds 880 points. Nifty holds over 24,000. And global crude oil prices rise over 1.5%. Brent crude trades at $64.02 per barrel. And that's it in today's edition of Market Mantra. Till we meet tomorrow, goodbye. Market Mantra.